ये साप्ताहिक बाइबल का उपदेश प्लेनफील्ड क्रिश्चियन साइंस चर्च इंडिपेंडेंट से है, जो प्लेनफील्ड न्यू जर्सी अमेरिका में है। अधिक जानकारी के लिए कृपया हमारी वेबसाइट पर जाएं www.plainfieldcs.com। आपके ध्यान के लिए ये पाठ रविवार 29 दिसंबर 2024 के लिए है। विषय क्रिश्चियन साइंस, स्वर्णपथ, मिका। हे बैतुलहम अफराता, यदि तू ऐसा छोटा है कि यहूदा के हजारों में गिना नहीं जाता, तो भी तुझ में से मेरे लिए एक पुरुष निकलेगा जो इसराइलियों में प्रभुता करने वाला होगा, और उसका निकलना प्राचीन अकाल से वरुण अनादि अकाल से होता आया है। उत्तर दिए ध्यान, मिका, यशाया। और वो खड़ा होकर यहोवा की दी हुई शक्ति से और अपने परमेश्वर यहोवा के नाम के प्रताप से उनकी चरवाही करेगा, और वो सुरक्षित रहेंगे, क्योंकि अब वो पृथ्वी की छोर तक महान ठहरेगा। क्योंकि हमारे लिए एक बालक उत्पन्न हुआ, हमें एक पुत्र दिया गया है, और प्रभुता उसके कंधे पर होगी, और उसका नाम अद्भुत, युक्ति करने वाला, पराक्रमी परमेश्वर, अनंत काल का पिता और शांति का राजकुमार रखा जाएगा। उसकी प्रभुता सर्वदा बढ़ती जाएगी और उसकी शांति का अंत ना होगा। इसलिए वो उसको दाऊद की गद्दी पर इस समय से लेकर सर्वदा के लिए न्याय धर्म के द्वारा स्थिर किए और संभाले रहेगा। सेनाओं के यहोवा की धुन की द्वारा ये हो जाएगा। हर एक ताई भर दी जाए और हर एक पहाड़ और पहाड़ी गिरा दी जाए। जो टेढ़ा है वो सीधा और जो ऊंचा है वो चौरस किया जाए। तब यहोवा का तेज प्रगट होगा और सब पुरानी उसको एक संग दिखेंगे, क्योंकि यहोवा ने आप ही ऐसा कहा है। पाठ उपदेश बाइबल में से यशाया। तब यशी के ठोंठ में से एक डाली फूट निकलेगी और उसकी जड़ में से एक शाखा निकलकर फलवंत होगी, और यहोवा की आत्मा, बुद्धि और समझ की आत्मा, युक्ति और पराक्रम की आत्मा और ज्ञान और यहोवा के भय की आत्मा उस पर ठहरेगी, और उसको यहोवा का भय सुगंध सा भाएगा। वो मुंह देखा न्याय न करेगा और ना अपने कानों के सुनने के अनुसार निर्णय करेगा, परंतु वो कंगालों को न्याय धाम से और पृथ्वी के नम्र लोगों का निर्णय खराई से करेगा, और वो पृथ्वी को अपने वचन के सौंते से मारेगा और अपनी फूंक के झोंके से दुष्ट को मिटा डालेगा। उसकी कट्टी का फेंटा धाम और उसकी कमर का फेंटा सच्चाई होगी। तब भेड़िया भेड़ के बच्चे के संग रहा करेगा और चीता बकरी के बच्चे के साथ बैठा रहेगा, और बछड़ा और जवान सिंह और पाला पोसा हुआ बैल तीनों इकट्ठे रहेंगे, और एक छोटा लड़का उनकी अगुवाई करेगा। मेरे सारे पवित्र पर्वत पर ना तो कोई दुख देगा और ना हानि करेगा, क्योंकि पृथ्वी यहोवा के ज्ञान से ऐसी भर जाएगी जैसे जल समंदर में भरा रहता है। मत्ती। अब यीशु मसीह का जन्म इस प्रकार से हुआ कि जब उसकी माता मरियम की मंगनी यूसुफ के साथ हो गई, तो उनके इकट्ठे होने के पहले से वो पवित्र आत्मा की ओर से गर्भवती पाई गई। सो उसके पति यूसुफ ने, जो धार्मी था और उसे बदनाम करना नहीं चाहता था, उसे चुपके से त्याग देने की हिंसा की। जब वो इन बातों की सोच ही में था, तो प्रभु का स्वर्गदूत उसे सपने में दिखाई देकर कहने लगा, हे यूसुफ, दाऊद की संतान, तू अपनी पत्नी मरियम को अपने यहाँ ले आने से मत डर, क्योंकि जो उसके गर्भ में है वो पवित्र आत्मा की ओर से है। वो पुत्र जनेगी और तू उसका नाम यीशु रखना, क्योंकि वो अपने लोगों का उनके पापों से उद्धार करेगा। ये सब इसलिए हुआ कि जो वचन प्रभु ने भविष्य अधिवक्ताओं के द्वारा कहा था पूरा हो, कि देखो, एक कुमारी गर्भवती होगी और एक पुत्र जनेगी, और उसका नाम इमैनुअल रखा जाएगा, जिसका अर्थ ये है, परमेश्वर हमारे साथ। सो यूसुफ नींद से जागकर प्रभु के दूत की आज्ञा अनुसार अपनी पत्नी को अपने यहाँ ले आया, और जब तक वो पुत्र न जनी तब तक वो उसके पास ना गया, और उसने उसका नाम यीशु रखा। मत्ती। हेरोदीस राजा के दिनों में जब यहूदिया के बैतुलहम में यीशु का जन्म हुआ तो देखो पूर्व से कई ज्योतिषी यरूशलेम में आकर पूछने लगे कि यहूदियों का राजा जिसका जन्म हुआ है कहाँ है, क्योंकि हमने पूर्व में उसका तारा देखा है और उसको प्रणाम करने आए हैं। ये सुनकर हेरोदीस राजा और उसके साथ सारा यरूशलेम घबरा गया और उसने लोगों के सब महायाजकों और शास्त्रियों को इकट्ठा करके उनसे पूछा कि मसीह का जन्म कहाँ होना चाहिए। उन्होंने उससे कहा, यहूदिया के बैतलहम में, क्योंकि भविष्य अधिवक्ताओं द्वारा यूं ही लिखा है कि हे बैतलहम जो यहूदा के देश में है, तो किसी रीति से यहूदा के अधिकारियों में सबसे छोटा नहीं, क्योंकि तुझ में से एक अधिपति निकलेगा जो मेरी प्रजा इसराइल की रखवाली करेगा। तब हेरोदीस ने ज्योतिषियों को चुपके से बुलाकर उनसे पूछा कि तारा ठीक किस समय दिखाई दिया था, और उनसे ये कहकर उन्हें बैतलहम भेजा कि जाकर उस बालक के विषय में ठीक ठीक मालूम करो, और जब वो मिल जाए तो मुझे समाचार दो ताकि मैं भी आकर उसको प्रणाम करूं। वो राजा की बात सुनकर चले गए और देखो जो तारा उन्होंने पूर्व में देखा था वो उनके आगे आगे चला और जहां बालक था उस जगह के ऊपर पहुंचकर ठहर गया। उस तारे को देखकर वो अति आनंदित हुए और उस घर में पहुंचकर उस बालक को उसकी माता मरियम के साथ देखा और मुंह के बल गिरकर उसे प्रणाम किया और अपना अपना थैला खोलकर उसे सोना और लुबान और गंधर्व की भेंट चढ़ाई। लुका, और वो बालक बढ़ता और बलवंत होता और बुद्धि से परिपूर्ण होता गया और परमेश्वर का अनुग्रह उस पर था। उसके माता पिता प्रतिवर्ष फिसा के पर्व में यरूशलेम को जाया करते थे। जब वो 12 वर्ष का हुआ तो वो पर्व की रीति के अनुसार यरूशलेम को गए, और जब वो उन दिनों को पूरा करके लौटने लगे तो वो लड़का यीशु यरूशलेम में रह गया, और ये उसके माता पिता नहीं जानते थे। वो ये समझ कर कि वो और यात्रियों के साथ होगा, एक दिन का पड़ाव निकल गए और उसे अपने कुटुंबियों और जान पहचान वालों में ढूंढने लगे, पर जब नहीं निकला तो ढूंढते ढूंढते यरूशलेम को फिर लौट गए। और 3 दिन के बाद उन्होंने मंदिर में उपदेशकों के बीच में बैठे उनकी सुनते और उनसे प्रश्न करते पाया, और जितने उसकी सुन रहे थे वो सब उसकी समझ और उसके उत्तरों से चकित थे। तब वो उसे देखकर चकित हुए और उसकी माता ने उससे कहा, हे पुत्र, तूने हमसे क्यों ऐसा व्यवहार किया? देख, तेरा पिता और मैं कुटते हुए तुझे ढूंढते थे। उसने उनसे कहा, तुम मुझे क्यों ढूंढते थे? क्या नहीं जानते थे कि मुझे अपने पिता के भवन में होना अवश्य है? और यीशु बुद्धि और डेल डोल में और परमेश्वर और मनुष्यों के अनुग्रह में बढ़ता गया। अब मैं मेरी बेकर एडी द्वारा क्रिश्चियन साइंस की किताब विज्ञान और स्वस्थ शास्त्रों की कुंजी के साथ के साहस संबंधी अंश पढ़ूंगा। विज्ञान और स्वस्थ। अनंत पर टिके रहने वालों के लिए आज का दिन आशीर्वाद के साथ बुरा है। जागृत चरवाहा सुबह की पहली धुंधली किरणों को देखता है, तभी एक जी उठने के दिन की पूरी चमक आती है। इस प्रकार भविष्य अधिवक्ता चरवाहों के लिए पीला तारा चमका, तो भी रात बीत गई और वो आ गया जहां बैतुलहम के बच्चे मसीह के मानव संदेशवाहिक सत्य को अस्पष्टता में रखा गया था, जो अंधे को स्पष्ट कर देगा कि मसीह यीशु के द्वारा उद्धार का मार्ग समझ में आ जाएगा, जब तक कि त्रुटि की रात भर भोर की किरणें न चमकें और होने के मार्गदर्शक सितारे को चमकाएं। ज्ञानियों को दिव्य विज्ञान के इस दिन के तारे को दिखाने और उसका पालन करने के लिए प्रेरित किया गया, जिससे शाश्वत सिद्ध भाव का मार्ग प्रशासित हुआ। विचारकों का समय आ गया है। सत्य सिद्धांतों और समय समानतों प्रणालियों से स्वतंत्र मानवता के द्वार पर दस्तक देता है। अतीत के संतोष और भौतिकवाद की ठंडी परंपरा के बीच टकराव कम हो रहा है। भगवान की अज्ञानता अब विश्वास के रास्ते का पत्थर नहीं है। आज्ञाकारिता की एकमात्र जमानत उसी की एक सही आशंका है, जिसे जानने के लिए जीवन अनंत है। यद्यपि साम्राज्य गिरते हैं, प्रभु हमेशा के लिए शासन करेंगे। एक पुस्तक नए विचारों का परिचय तो करवाती है, लेकिन उन्हें शीघ्रता से समझा नहीं सकती। ऊंचे अंजीर को काटना और खुरदरे पत्थर को काटना मजबूत अगरा दूत का काम है। भावी पीढ़ियों को ये बताना होगा कि अग्रणी ने क्या हासिल किया है। क्रिश्चियन साइंस का शारीरिक उपचार अब परिणाम है यीशु के समय के अनुसार ईश्वरीय सिद्धांत के संचालन से। इससे पहले के पाप और बीमारी मानवीय चेतना में अपनी वास्तविकता खो देते हैं और सिद्ध भाविक रूप से गायब हो जाते हैं और आवश्यक रूप से अंधेरा प्रकाश और पाप को सुधार के लिए जगा देता है। अब अतीत की तरह ये शक्तिशाली कार्य अलौकिक नहीं है बल्कि सर्वज प्राकृतिक हैं। वो इमैनुअल या भगवान हमारे साथ है का संकेत हैं। मानवीय चेतना में मौजूद एक दिव्य प्रभाव और खुद को दोहराते हुए अब जैसा कि वादा किया गया था आ रहा है कि बिंदुओं को छुटकारे का, अंधों को दृष्टि पाने का सुसमाचार प्रचार करूं और कुचले हुओं को छुड़ाऊं। यीशु एक कंवारी का बेटा था। उन्हें परमेश्वर के वचन का उपदेश देने और मनुष्यों के रूप में प्रकट करने के लिए नियुक्त किया गया था ताकि वो समझ के साथ विचारों को भी जान सकें। उनके बारे में मरियम की धारणा आध्यात्मिक थी क्योंकि केवल पवित्रता ही सत्य और प्रेम को प्रतिबिंबित कर सकती थी जो स्पष्ट रूप से अच्छे और शुद्ध मसीह यीशु में अवतरित थे। उन्होंने उच्चतम प्रकार की दिव्यता व्यक्त की जो उस युग में एक मांसल रूप में व्यक्त कर सकता था। असल और आदर्श मनुष्य में मांस तत्व प्रवेश नहीं कर सकता। इस प्रकार ये है कि मसीह अपनी छवि में भगवान और मनुष्य के बीच में संयुग या आध्यात्मिक समझौते को दर्शाता है। नासरत के यीशु के आगमन ने मसीही युग की पहला शताब्दी को चिन्हित किया लेकिन मसीह वर्षों या दिनों की शुरुआत के बिना है। मसीही युग के पहले और बाद में सभी पीढ़ियों के दौरान आध्यात्मिक विचार के रूप में मसीह भगवान का प्रतिबिंब शक्ति और अनुग्रह के कुछ उपाय के साथ आया जो सभी मसीह सत्य को प्राप्त करने के लिए तैयार हैं। हमारे मास्टर ने बीमारों को ठीक किया, मसीही उपचार का अभ्यास किया और अपने छात्रों को इसके दिव्य सिद्धांत की समानताओं को सिखाया, लेकिन उन्होंने बीमारी को ठीक करने और रोकने के इस सिद्धांत को प्रदर्शित करने के लिए कोई निश्चित नियम नहीं बनाया। क्रिश्चियन साइंस में इस नियम की खोज की जानी बाकी है। 19वीं सदी के अंत में मैंने क्रिश्चियन साइंस के दिव्य नियमों का प्रदर्शन किया। उन्हें व्यापकतम व्यावहारिक परीक्षण के अधीन किया गया और हर जगह जब उन्हें उन परिस्थितियों में ईमानदारी से लागू किया गया जहां मानवीय रूप से प्रदर्शन संभव था तो इस विज्ञान ने दिखाया कि सत्य ने अपनी दिव्य और उपचारात्मक प्रभावकारिता को नहीं खाया है। भले ही यीशु द्वारा यहूदा की पहाड़ियों और गलील की घाटियों में इन नियमों का पालन किए हुए सदियां बीत चुकी थी, ये अप्रत्यक्ष सिद्धांत इमैनुअल के रहस्य उद्घाटन की ओर इशारा करता है। भगवान हमारे साथ है, संप्रभु उपस्थिति पुरुषों के बच्चों को हर बीमारी से बचाते हुए, शरीर जिसका वारिस है, क्रिश्चियन साइंस के माध्यम से धर्म और चिकित्सा एक दिव्य प्रकृति और सारे प्रतीत हैं। ये ताज़ा विश्वास और समझ के लिए दिया जाता है और विचार भगवान के साथ खुद को बुद्धिमानी से परिचित करते हैं। जब मृत्यु घाटी की छाया में पहले से ही खड़े होकर नश्वर अस्तित्व की सीमा के पास मैंने दिव्य विज्ञान में इन सच्चाइयों को सीखा है, सभी वास्तविक अस्तित्व ईश्वर दिव्य मन में है और के जीवन सत्य प्रेम सर्वशक्तिशाली और सर्ववर्तमान हैं। सत्य के विपरीत जिसे त्रुटि कहा जाता है, पाप मृत्यु बीमारी सामग्री में मन की झूठी भावतिक भावना की झूठी गवाही है। मेरी खोज के त्रुटिपूर्ण नश्वर गलत नाम वाला मन नश्वर शरीर के सभी जीव और क्रिया का उत्पादन करता है, मेरे विचारों को नए स्थानों में काम करने के लिए सेट करता है और इस प्रस्ताव के मेरे प्रदर्शन तक ले जाता है कि मन ही सब कुछ है और पदार्थ अग्रणी रूप में शून्य है, मन विज्ञान में कारक है। क्रिश्चियन साइंस निर्वाद रूप से प्रकट करती है कि मन ही सब कुछ है, कि केवल वास्तविकताएं ही दिव्य मन और विचार हैं। अपनी खोज के 3 साल बाद मैंने माइंड हीलिंग की इस समस्या का समाधान खोजा, शास्त्रों की खोज की ओर थोड़ा और पढ़ा, समाज से अलग रखा और एक सकारात्मक नियम की खोज के लिए समय और ऊर्जा समर्पित की। ये खोज मधुर, शांत और आशा से भरी हुई थी, स्वार्थपूर्ण या निराशाजनक नहीं थी। मैं जानता था कि सभी सामन जैसे पूर्ण मन के कार्य का सिद्धांत ईश्वर है और ये के पवित्र उत्थान विश्वास द्वारा आदम मसीही उपचार में उत्पन्न हुए थे, लेकिन मुझे इस उपचार का पता होना चाहिए और मैं दिव्य रहस्य उद्घाटन कारण और प्रदर्शन के माध्यम से पूर्ण निष्कर्ष के लिए अपना रास्ता जीता। समझ में सत्य का रहस्य उद्घाटन मेरे पास धीरे धीरे और स्पष्ट रूप से दिव्य शक्ति के माध्यम से आया। जब एक नया आध्यात्मिक विचार धरती पर पैदा होता है तो यशाया की भविष्यवाणी का पवित्र शास्त्र कशय रूप से पूरा होता है, क्योंकि हमारे लिए एक बालक उत्पन्न हुआ और उसका नाम अद्भुत होगा। अब मैं मेरी बेकर एडी द्वारा चर्च मैनुअल में दिए गए 3 दैनिक कर्तव्यों को पढ़ूंगा। दैनिक प्रार्थना। प्रत्येक दिन प्रार्थना करने के लिए इस चर्च के प्रत्येक सदस्य का कर्तव्य होगा, तुम्हारा राज्य आए, ईश्वरी सत्य जीवन और प्रेम के शासन को मुझमें स्थापित कर और मुझ पर शासन कर, और तेरा वचन सभी मनुष्यों के स्नेह को समर्थ कर सकता है और उन पर शासन कर। आदेशों और कर्तव्यों के लिए एक नियम। ना तो दुश्मनी और ना व्यक्तिगत लगाव मदर चर्च के सदस्यों के आदेशों और कर्तव्यों पर लागू करना चाहिए। विज्ञान में दिव्य प्रेम ही मनुष्य को नियंत्रित करता है और एक क्रिश्चियन विज्ञानी प्यार की मीठी सुविधाओं को दर्शाता है। प्यार में डांटने पर, सच्चा भाईचारा, परोपकार और क्षमा में। इस चर्च के सदस्यों को प्रतिदिन ध्यान रखना चाहिए और सभी बुराई दूर करने, भविष्यवाणी, न्याय करने, निंदा करने, परमाश देने, प्रभावित करने या गलत तरीके से प्रभावित होने से बचने के लिए प्रार्थना करनी चाहिए। कर्तव्य के प्रति सतर्कता। इस चर्च के प्रत्येक सदस्य का ये कर्तव्य होगा कि वो प्रतिदिन आक्रामक मानसिक सुझाव से बचाव करे और भूलकर भी ईश्वर, नेता और मानव जाति के प्रति अपने कर्तव्य की उपेक्षा नहीं करनी चाहिए। उनके कामों से उन्हें आंका जाएगा और वो उचित या निंदनीय होगा।